हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारतः। इससे पहले कि श्लोक की हम आगे चर्चा करें, हम चेतना के ऊपर विचार करेंगे जो कि आत्मा का गुण है। चेतना हमने पहले भी चर्चा किया था, ये आत्मा का गुण है जिसके द्वारा हम समझते हैं कि हम हैं। साथ ही साथ चेतना का एक गुण ये भी है जिसमें हम जिसके द्वारा हमारे अंदर ये ज्ञान शक्ति है जिसमें हम अपने बारे में समझ पाते हैं कि हम कौन हैं या हम हैं, और आसपास की वस्तुएं जो हम नहीं हैं उनके बारे में भी हम जान पाते हैं। जैसे कि आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ये मेरे सामने एक मोबाइल फ़ोन है, रिकॉर्डर है, तो मैं मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डर इन वस्तुओं को अपने से भिन्न देख पा रहा हूँ और इनके बारे में मैं कुछ हद तक जानता हूँ। तो ये ज्ञान शक्ति जो है ये आत्मा की चेतना के कारण है, और मैं ये भी अनुभव कर रहा हूँ कि मैं हूँ, तो ये भी आत्मा की चेतना के कारण ही ज्ञान शक्ति होती है। अब सुंदर बात यह है कि ये ज्ञान शक्ति आत्मा से कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतना आत्मा का स्वरूप शक्ति मतलब स्वरूप ही है उसके, मतलब आत्मा का आत्मा की चेतना उसकी जो गुण है आत्मा का उसको कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे आत्मा अविनाशी है ऐसे आत्मा की चेतना भी अविनाशी है, लेकिन चेतना दूषित हो सकती है। जैसे अग्नि दूषित नहीं होती है, अग्नि की जो रोशनी है वो रोशनी अगर किसी शीशे से बाहर प्रकट होगी तो हरा पीला नीले के रूप में दिखाई पड़ेगी, लेकिन अग्नि अपने आप में पूरी तरह से पवित्र है। तो हमारी जो चेतना है वो भौतिक गुणों के द्वारा प्रभावित होती है, बावजूद इसके कि आत्मा का कोई संबंध गुणों से नहीं होता है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तब हम अपने आप को और हमारे जो इर्द गिर्द वस्तु हैं जो हम नहीं हैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, सही नजरिए से देख पाते हैं। इसको थोड़ा व्यतिरेक में देखेंगे, जब हमारी चेतना दूषित हो जाती है भौतिक इच्छाओं के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण, तो हम सोचते हैं कि हम भोगता हैं, भोगने वाले हैं, हम नियंता हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने वाले हैं, और हम प्रोप्राइटर हैं, मतलब हम उसको उस वस्तु को के मालिक हम हैं। लेकिन और इस कारण से हर वस्तु को जब हम देखते हैं तो भोग दृष्टि से देखते हैं, ये हड़पने की दृष्टि से देखते हैं, ये कंट्रोल करने की दृष्टि से देखते हैं, और हर व्यक्ति को इसी प्रकार से देखते हैं। और यही कारण है इस जगत में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अशांति है, उसका कारण यही है, भगवद्गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक के अनुसार। तो जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है तो हम लोगों को या वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं, हृदय में इस बात को अनुभव करते हैं कि हम स्वयं भगवान कृष्ण के दास हैं और सभी जीवात्माएं कृष्ण के दास हैं और सभी वस्तुओं के मालिक भोक्ता और नियंता कृष्ण हैं, और इस कारण से सभी वस्तुएं उनकी सेवा में उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित की जानी चाहिए। तो ये जो कृष्ण भावना का तरीका है ये इसीलिए किसी की भौतिक योग्यता पे आधारित नहीं है। कोई अगर व्यक्ति भौतिक रूप से अयोग्य भी क्यों ना हो फिर भी वो चेतना से युक्त है। एक किसान हो या एक अनपढ़ माताजी हो, कुछ भी हो, गृहिणी कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने ये जानता है कि वो है, और वो ये भी जानता है कि आसपास वस्तुएं क्या हैं। जैसे जैसे उसकी चेतना हरे कृष्ण मंत्र और भगवद गीता और भगवान के प्रसाद के द्वारा शुद्ध हो जाएगी, अपने आप ही उसका परसेप्शन, उसका देखने का नजरिया बदलता चला जाएगा। जितना जितना भगवत प्रेम बढ़ता चला जाएगा हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, अपने आप ही उसका नजरिया परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ अपने आप का अर्थ है भक्ति के प्रोसेस के द्वारा, भगवद गीता को सुनने के द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र को जप करने के द्वारा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा। तो इस प्रकार से हम अपने इस अविनाशी स्वभाव को शुद्ध कर सकते हैं, चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। अविनाशी अप्रमेय, अप्रमेय जिसको मापा नहीं जा सकता, अप्रियमय करती होता है तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। ये अद्भुत है कि भगवान की पहली लाइन से हम समझ रहे हैं कि भगवान हमको शोक करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य करने से मना नहीं कर रहे। शोक मत करो और बिना शोक किए तुम अपने कर्तव्य करो। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी, यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ना सिर्फ आत्मा बहुत छोटी है, अपितु शरीर से बिल्कुल अलग स्वभाव वाली है। जैसे हमारे हाथ और पैर देखने की क्षमता नहीं रखते हैं, कार्य करने की क्षमता रखते हैं। आंखें कार्य करने की क्षमता नहीं रखती हैं, देखने की क्षमता रखती हैं। तो उसी प्रकार से हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं वो नाशवान हैं, क्योंकि भौतिक पदार्थों से बनी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाता है इंग्लिश में, स्वरूप से ही बिल्कुल अलग हैं, वो भिन्न हैं, नॉन कॉन्शियस हैं, जिसमें चेतना नहीं है। जैसे मेरे हाथ में कोई चेतना नहीं है, मेरी आंखों में कोई चेतना नहीं है। तो आत्मा को, एक तो आत्मा का स्वभाव बहुत अलग है, चेतना से युक्त है, अविनाशी है, और हमारा जो शरीर है वो अचित है, दैट मीन्स चेतना युक्त नहीं है और नाशवान है। और जो वस्तुएं हमारे पास हैं समझने की, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी इसी प्रकार के हैं, भौतिक हैं, नाशवान हैं और अचेतन हैं। तो इसलिए भौतिक बुद्धि के द्वारा, भौतिक मन के द्वारा, भौतिक इंद्रिय के द्वारा आत्मा को ही समझना असंभव है, और उसी प्रकार से भगवान को भी समझना संभव है। इसीलिए ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये दिव्य मंत्र है, ये स्पिरिचुअल है, और जब इसका उच्चारण हम करते हैं बार बार, तो इसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में रिवील होता है। भगवत कृपा से ये ज्ञान रिवील होता है, जितनी मात्रा में हमारी चेतना शुद्ध हो गई। तो इसी कारण से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लोग आत्मा को समझ नहीं पाते। बहुत बार वो प्रयास करते हैं कि एक शीशे के बर्तन में या किसी शीशे के चैम्बर में किसी व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो मरने वाला हो, और फिर सोचते हैं कि उसमें से आत्मा नहीं निकल सकता। तो ये बहुत ही बचपना वाली बात है, बहुत बचपने वाली बुद्धि है। आत्मा हर प्रकार से किसी भी परिस्थिति में रह सकती है, क्योंकि उसका स्वरूप, उसका जो साइज है और स्वरूप है, बिल्कुल अलग है भौतिक पदार्थों से। और आप एक और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, जब हम भौतिक जगत की बातों को सुनते हैं तो हमारा अभिनिवेश इस शरीर में बढ़ जाता है और हम लोग शोक और भय से व्याप्त हो जाते हैं और मोह से व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के श्लोकों को हम सुनते हैं तो आप देखेंगे सुबह अपने आप ही हृदय से शोक नष्ट हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है कि आगे मेरा क्या होगा। अरे क्या होगा, आपका कुछ हुआ ही, कुछ हो ही नहीं रहा है, आत्मा का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो भय करने की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके संबंध में सोक्रेटस को एक बार, उनको जो जिस प्रकार की वो शिक्षा दे रहे थे, तो उस समय जो रोमन अंपायर था, रोमन राजा था, उसको पसंद नहीं आया। तो उसने बोला कि तुम स्वीकार करते हो या तुम्हें जान से मार दिया जाए। जब उसको मारने के लिए लोग आए, सैनिक लोग मारने के लिए आए, तो क्योंकि वो उनको कन्विंस थे कि वो शरीर नहीं है, तो उन्हें बोला तुम मारने सकते हो लेकिन मारने से पहले कृपया मुझे पकड़ के तो दिखाओ। और उन्हें बड़े सहर्ष मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो व्यक्ति को अगर सच्चा ज्ञान उदित हो जाता है तो फिर उसके हृदय में शोक, मोह और भय नष्ट हो जाता है। तो भगवद गीता को सुनने से बहुत लाभ है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान हमें शरीर देते हैं भोग करने के लिए और मुक्ति करने के लिए, और भोग और मुक्ति दोनों ही धर्म से उत्पन्न होते हैं। धर्म के ही द्वारा अर्थ मिलता है, अर्थ से काम मिलता है, और धर्म के द्वारा ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अपराधर्म का काम कार्य करते हैं, जगत के वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हैं, कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उससे व्यक्ति को अर्थ मिलता है, अर्थ से हमें इंद्रिय तृप्ति मिलती है। लेकिन अगर पराधर्म का अनुशीलन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे हमको भगवान मुक्ति मिलती है, हमारा ज्ञान नष्ट होता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर तो अवश्यंभावी रूप से नाशवान है, तो इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और आत्मा पूरी तरह से शाश्वत है, तो उनके उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस शोक की वजह से अपने धर्म को छोड़ना ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। जो आपका क्षत्रिय धर्म है इसका पालन करें, इससे आपको इंद्रिय तृप्ति भी प्राप्त होगी और अंततोगत भगवान के धाम की मुक्ति भी प्राप्त होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। श्रील प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर श्रील बलदेव विद्याभूषण को ही कोट कर रहे हैं। इसमें वेदांत सूत्र में श्रील बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, वेदांत सूत्र से कोट करते हुए, गुणाद गुणाद व आलोकवद, कि आत्मा जो है, ये वेदांत सूत्र का 2.3.26 में से है कि जो आत्मा है ये प्रकाश के समान है। आत्मा का ये जो व्याप्ति है पूरे शरीर में, व्यापकता है, वो प्रकाश के समान है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो धारण है ये केवल अपने मन से मनगणन तरीके से दिया जा रहा है, ये वेदांत सूत्र से दिया गया है जो ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो हम लोग प्रभुपाद यहाँ पे इसी बात को बता रहे हैं, वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। तो हम लोग अपने पूरे शरीर में अपने चेतना को, अपने चेतना रूपी शक्ति या चेतना रूपी प्रकाश से अपने शरीर को व्याप्त करते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। ये भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी ने दिया है कि जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वहाँ पे सड़ांध होने लगती है। बहुत बार हमारे खाने में जब कुछ फफूंद लग जाती है तो सूर्य के सामने रखने मात्र से वो फफूंद अपने आप चली जाती है। तो सूर्य की शक्ति के द्वारा, सूर्य बहुत दूर है लेकिन उसकी जो लाइट और हीट है उसके द्वारा वो पूरे जगत में डिसइंफेक्शन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही आत्मा के होने के कारण जो शरीर है वो सुंदर दिखता है, यह शरीर कुछ हद तक साफ सुथरा रहता है, यह मेंटेन रहता है, और जैसे आत्मा चली जाती है तुरंत शरीर सड़ना चालू कर देता है। वस्तुतः शरीर अभी भी सड़ रहा है लेकिन आत्मा के कारण ये इसकी स्थिति बनी रहती है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जो हमने आज समझने का प्रयास किया, और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, स्पेशली भगवान की भक्ति के कर्तव्य, क्योंकि वो हमारे मुक्ति का कारण बनेंगे। इस समाज में इस प्रकार का ज्ञान कितने लोगों के पास है? जो लोग हमको भक्ति करने से मना करते हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या इस प्रकार का सूक्ष्म विज्ञान आत्मा का वो समझते हैं? तो निश्चित सी बात आप सभी जानते हैं वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की बात सुनकर जो अज्ञान में है, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।